ओम शांति, ओम शांति। जरा स्माइल दे करके प्यार से बोलिए, ओम शांति। थैंक यू। अभी एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण सत्र है। बोर्ड तो पढ़ लिया, आज कौन सी तारीख है? 31 मई। और क्या होता है उस दिन? नो टोबैको डे। आज पूरी दुनिया के अंदर इस दिवस को नो टोबैको डे के रूप से मनाया जाता है। तो आज छोटा सा कार्यक्रम हम नो टोबैको डे पर कर रहे हैं, और मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे मंच पर आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार बनारसी भाई जी। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी गीता बहन, श्याम प्रताप भाई जी अगर पधारे हैं तो। वैसे सिर्फ टोबैको या अल्कोहल लेना वही एक एडिक्शन या व्यसन या डिपेंडेंसी नहीं होती है, लेकिन आजकल तो जीवन के अंदर बहुत छोटी छोटी बातों में हम डिपेंडेंट होने लगे हैं। ये तो आज का दिन है नो टोबैको डे, लेकिन अगर देखा जाए तो हर पल बहुत सारी डिपेंडेंसी हम पर हावी होते जा रही है। और डिपेंडेंसी आना मतलब हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारी इमोशनल हेल्थ थोड़ी वीक है। जैसे कोई फिजिकल वीक होता है तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं, मदद करते हैं, उसको खाना दे आते हैं, उसको उठा करके दूसरे कमरे तक ले जाते हैं। लेकिन ये मेंटल हेल्थ अगर थोड़ी सी भी डाउन होती है, इमोशनल हेल्थ थोड़ा सी भी बिगड़ती है, तो इसके कारण डिपेंडेंसी और एडिक्शन आने की शक्यताएं रह जाती है। जब भी कोई बात की एडिक्शन कैसे आती है, तो जब इंसान अंदर से अपने आप को खाली महसूस करता है। बाहर से वैसे हम सबकी जीवन बहुत भरी भरी है, बाहर से हमारे पास पोस्ट, पोजीशन, वैभव, संपत्ति, रूप, रंग सब कुछ है, लेकिन जब हम इंटरनल खाली होते तो खालीपना थोड़े समय के भी प्लेजर ढूंढता है, और कहीं से भी वो प्लेजर मिल जाती है, वो प्लेजर फिर बार बार लेने की मन करती है। जैसे कि अब मेरे को खालीपन लग रहा है तो मैंने यूज किया मोबाइल को, और मैं मोबाइल में चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम वट एवर स्क्रोल करती रहती हूं और थोड़ा समय कुछ देख लेती हूं, तो थोड़े समय के लिए मुझे अंदर से वो प्लेजर प्राप्त होती है, और वो प्लेजर मुझे बार बार वही चीज करने के लिए ले आती है, क्योंकि जैसे मैं उसको रखती हूं वापिस मेरा मन खालीपन का एहसास करता है, इसलिए मैं भरने के लिए वापिस उसी तरफ जा रही होती हूं। और जब कोई भी चीज बार बार करते हो हमारे जीवन की आदत बन जाती है, और वो आदत हमें एडिक्शन की ओर ले जाती, वो डिपेंडेंसी लाती है, और वो डिपेंडेंसी हमारा एडिक्शन हो जाता है। तो सिर्फ टोबैको की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी डिपेंडेंसी, किसी मित्र के बिना नहीं चलना, किसी स्थान के बिना नहीं रहना, कभी कभी तो कहियों को तकिए की भी डिपेंडेंसी होती कि मुझे इसी तकिए पर नींद आती है। तो आज इंसान ऐसे बहुत सारी डिपेंडेंसी पर जी रहा है। तो लाइफ के अंदर एडिक्शन या डिपेंडेंसी वो हमें अंदर से और खाली करती है, और वो हमारे विल पावर को तोड़ती है। और जब हम विल पावर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो ही बातें हमें बार बार करने का मन होता है, और बार बार विल पावर जितना स्ट्रांग करने के लिए हम मेहनत करते हैं उतना हम ढीले होते जाते हैं। और विल पावर स्ट्रांग करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो चीज की आप एडिक्टेड है उसका मन करने के बावजूद भी आप उस गलत करने से अपने आप को बार बार रोको, उसके लिए अपने आप को दृढ़ रखो, और तभी हम अपने विल पावर को स्ट्रांग बना सकते हैं। और इसमें हमारा मेडिटेशन बहुत ही मदद करता है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर के हमारे बीच है, सबसे पहले हमारे आदरणीय बहनों से अनुरोध करती हूं कि आप तिलक और बेज के द्वारा हमारे मंचासीन मेहमानों का सम्मान करेंगे। तब तक मैं हमारे आदरणीय भ्राता बनारसी भाई जी का परिचय आप सबको कराती हूं। जैसे कल हमने सुना कि ये यूथ विंग की स्थापना 1985 में हुई और उसी प्रकार ये मेडिकल विंग की स्थापना भी 1985 में हुई। हम सब तालियों के द्वारा दोनों ही महारथी भाई बहनों का सम्मान करते हैं। बनारसी भाई अब मेडिकल विंग के राज्य का एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सेक्रेटरी है। पूरा नाम है आपका डॉक्टर बनारसी भाई जी। आप ग्रेजुएट होम्योपैथी में हैं और आफ्टर 1973 में आपकी पढ़ाई के बाद आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है। और मेडिकल विंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स कैंपेन जो भी यहाँ मेडिकल विंग से प्रोजेक्ट्स होते हैं आपका उसमें बहुमूल्य योगदान रहा है। और आपकी सबसे बड़ी, क्योंकि अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद में हॉस्पिटल ज्यादा होती है, क्योंकि मधुबन से माउंट आबू से जो भी बीमार होते हैं, किसी को भी कोई तकलीफ होती है फिजिकली लेकर के आना होता है तो भाई साहब को मिलना बहुत होता है। और भाई साहब के अंदर मैंने बहुत सारी विशेषताएं पाई है, रूबरू की है, जिस विशेषताओं से आपको भी मैं रूबरू कराने जा रही हूं। क्योंकि आपके अंदर सबसे बड़ी विशेषता है नम्रता। आप डॉक्टर है, आप पेशेंट की सेवा करते हुए भी, अहमदाबाद के इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को मिलते हुए, पेशेंट्स को केयर करते हुए, लगातार बिजी शेड्यूल में होते हुए भी बहुत शांत और नम्र है। उन्होंने कभी भी यानी कोई भी बात आई और हड़बड़ी कर दी या टेंशन में आ गए, कितने भी पेशेंट बीमार है, बड़ी बीमारी हो गई है, आईसीयू में तक ले जाना पड़ रहा है, लेकिन आप बहुत शांति से एक एक पेशेंट को इतनी केयर करते हैं और आप बहुत नम्रता से भरपूर है, ये हमने पाया है। आप डायरेक्टर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर एंड एवर हेल्दी हॉस्पिटल एट ब्रह्मा कुमारी शांतिवन कैंपस, ट्रस्टी एंड ट्रेजरर ऑफ JW ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो माउंट आबू में ही है। तो ऐसे बहुमुखी संपन्न, प्रतिभा संपन्न बनारसी भाई जी आज हमें प्राप्त है। आज का जो हमारा टॉपिक है, से नो टू टोबेको, जिंदगी को जुनो तंबाकू को नहीं, इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय बनारसी भाई। इसके बाद एक्टिविटी भी है तो इसमें सभी को लाभ लेना है।
आदरणीय गीता दीदी, हमारे कोऑर्डिनेटर महादेव नगर के, क्या कहें, कर्ता धरता या चंद्रिका दीदी का राइट हैंड, यूथ लीडर कहें, सर्वे सर्वा हैं, और सभा में उपस्थित भारत के कोने कोने से आए यूथ, हम आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से मेडिकल विंग की तरफ से आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब कितने महान हैं। यूथ लाइफ, और वो भी गर्मी के दिनों में छुट्टी, स्कूल कॉलेज की छुट्टी में आध्यात्मिकता में रुचि रख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए हैं, ये तो वंडरफुल है। अपोजिट लगता है, यूथ तो कहां कहां होते हैं आज। तो आप साधारण यूथ नहीं हो, आप लोगों को परमात्मा ने यहां बुलाया है, शिव बाबा के निमंत्रण पर आए हो। बल यूथ के हमारे चेयरपर्सन चंद्रिका दीदी के निमंत्रण गया होगा कि, लेकिन उसके पीछे परमात्मा का ये है जो सब कारोबार आप छोड़ करके अपनी दुनिया छोड़ करके त्याग करके यहां स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में स्पिरिचुअल वातावरण में आप लोग पधारे हो तो आपको आपका फिर से हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली स्थान पर आए हैं और आज नो टोबैको डे, सारा विश्व नो टोबैको डे मना रहा है। क्यों मना रहा है, इसके पीछे रहस्य क्या है, हम वो कहानी नहीं सुनाएंगे। WHO ने 1987 में इसकी शुरुआत किया और 1988 से 31 मई को मनाना शुरू किया। क्यों मनाना शुरू किया, आज देखते हैं कि 88 से जो चीज मनाई जा रही है, अवेयरनेस लाई जा रही है, जानकारियां दी जा रही है कि इससे क्या नुकसान है, फिर भी ये बढ़ता जा रहा है। आप लोग भी देख रहे हो ना, पहले कोई कोई यूथ को देखते थे, अब तो कॉमन हो गया है। अगर कोई यूथ कुछ नहीं लेता है तो उसको बुद्धू समझते हैं कि तो बुद्धू है, समझते हैं ना, आपके फ्रेंड आपको कहेंगे कि बुद्धू है, सन्यासी है, ये यूथ नहीं है। वो अपने कोई ये समझते हैं कि इसमें हमारी क्या बोले कि बहुत बड़ी प्रतिभा है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट घर से नाश्ता करके मोटर बाइक पर जा रहा है, सिगरेट पीते हुए जा रहा है, मैं हाथ दिया, सीनियरिटी के सामने वो रोका, सोचा होगा कि अंकल को कहीं जाना होगा, थोड़ा लिफ्ट मांगते हैं, रोका, बोला क्या चाहिए अंकल। हम बोला कि भाई ये सिगरेट क्यों पी रहे हो, तो अंकल आपको पता नहीं है हम अपने परिवार के पर्सनालिटी को दिखाने के लिए पी रहे हैं कि हम रईस परिवार के हैं, दुनिया देखे कि अच्छे मोटरसाइकिल से जा रहा है, हैंडसम लड़का है, सिगरेट पीते जा रहा है, बड़े अच्छे परिवार खानदान का लड़का है। मैं मुस्कुराया, मैं कहा बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, कितनी बीमारियां होगी तुम्हारे को, तुम्हारे मां बाप ने बहुत आस लगा करके कॉलेज भेजा है, मोटरसाइकिल दिया है कि बेटा को पैदल नहीं जाना पड़े, किस लिए आस लगाया है, सिगरेट पी करके परिवार को उपचार दिखाने के लिए नहीं। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे पढ़ाई पढ़ो और मार्क्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाओ, बोर्ड में फर्स्ट क्लास लाओ, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाओ, गोल्ड मेडल लाओ, तो तुम्हारे घर में दुनिया आएगी कि इनके बच्चे ये कैसे पढ़ते हैं, इनके माँ बाप कैसे पढ़ाते हैं, इनका परिवार कैसा है, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लाया है। उसकी आंखें नम हो गई और कहा कि अंकल आज से हम नहीं देंगे। तो हमारी यही युवाओं के प्रति एक निवेदन रहता है, रिक्वेस्ट रहती है, इस समय हमारे माँ बाप हमसे क्या चाहते हैं, समाज हमसे क्या चाह रही है, क्या आस रखा है, समाज की आस क्या है हमारे ऊपर, देश की आस क्या है। यही है कि हमारे युवा प्रधानमंत्री बोलते बोलते उनके गला रुक जाता है जब युवाओं को देखते हैं, कहां जा रहे हैं, क्या वो बहन है भाई है कोई भी है, कोई भी इन मेडिकल यूनिवर्सिटी के ले लीजिए, इंजीनियरिंग के लिए कोई भी, इवन मिडिल स्कूल को भी हम आपको बताएंगे। हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है नशा मुक्त भारत अभियान, हमने 16 देशों में 16 स्टेट में लॉन्चिंग किया है, कहां गवर्नर, कहां चीफ मिनिस्टर से, कहां प्रेसिडेंट ने लॉन्चिंग किया है, बंगाल में भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्चिंग किया बंगाल चैप्टर का, उड़ीसा में उनका घर है वहां गई तो उनको बहुत इन बातों में बहुत ये है, वहां उनसे लॉन्चिंग कराया उड़ीसा चैप्टर का। सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा है कि नहीं, अगर देश को बचाना है तो युवाओं को संभालना है। देखिए आपके ऊपर कितना डिपेंडेंसी है, देश आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आज देश जो ऊपर जा रहा है, कहां भारत, आज भारत कितना ऊपर है सब हम सबको पता है, किसके बदौलत, युवाओं के बदौलत। कौन से युवाओं के बदौलत, जो नशे के लत में पड़े हैं उनके बदौलत, नहीं, हमारे प्रधानमंत्री के स्पीच में है यही युवा कल के नेता बनेंगे, कोई प्रेसिडेंट बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। वो आसमान से नहीं आएंगे, दूसरे देश से बोरो करके उनको नहीं लाया जाएगा भारत के प्रेसिडेंट बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए। और आप जैसे युवा चरित्रवान होंगे, व्यसन से मुक्त होंगे, पढ़ाई में अच्छी तरह उनकी रुचि होगी, तो देश को कहां ले जाएंगे, सोचिए। आज भारत में अच्छा रिजल्ट हो सारे यूनिवर्सिटी के, सारे बोर्ड के, भारत का नाम कितना बाला होगा। हमने देखा है जब अभियान हमारी चल रही है उसमें स्कूल कॉलेज मिडिल स्कूल सब जगह हम स्कूलों में जाते हैं युवाओं को एक करने के लिए। एक हाई स्कूल में सीतामढ़ी, बिहार के डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, वहां गए हमारा अभियान। जब स्कूल में हेडमास्टर के पास गए तो उन्होंने बड़ा खुशी से, हाई स्कूल में 800 बच्चे थे, सभी को इकट्ठा कर दिया। हमारी बहनों ने नशे के ऊपर भाषण किया, हमने अट्रैक्शन के लिए उस गाड़ी में कुंभकर्ण को लेटाया है, कुंभकर्ण को देखने के लिए, बच्चे कहीं इधर उधर भागते नहीं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो उठ करके बैठता है, गर्दन हिलाता है और अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो बहनों ने एक घंटा जब उनको स्पीच दिया तो उसमें से 20 यूथ प्रिंसिपल के चैंबर में चल गए, सर आपने मेरी जान बचा दिया। भाई हमने क्यों, हमने तो जान, हम तो ऑफिस में बैठे हैं, जान तो उन बहनों ने बचाई है, उन बहनों को जाकर के आप कहो। तो नहीं सर, हम आपके हाई स्कूल के छात्र हैं, हम व्यसन के लत में हैं, व्यसन की तलब होती है तो हम अपने आप को पीटते हैं, रोते हैं, हम सहन नहीं कर पाते हैं, और हम लोगों ने पैसा माँ बाप देते नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हाई स्कूल में अमीर के बच्चे नहीं जाते हैं, मीडियम वर्ग के जाते हैं, गरीब के बच्चे जाते हैं, वो परिवार से बच्चे जाते हैं जिस परिवार के माँ बाप केवल कपड़ा और पढ़ाई का साधन देता है। तो वो बच्चे प्रिंसिपल को जाकर कहे कि जान बचाए, तो प्रिंसिपल ने कहा कि क्यों भाई, अब तो हम 20 बच्चे व्यसन लेते थे, तलब होता था, अब हम छोड़ तो सकते नहीं है, छूटी नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम 20 बच्चों ने प्लानिंग किया है कि कहीं तालाब में जाकर के डूब जाएं, कहीं नदी में जाएं, या कहीं पेड़ से लटकें, अपने आप को खत्म करें। प्रिंसिपल तो डर गया कि 20 बच्चे हमारे एक हाई स्कूल से अगर ये करते हैं तो हमारा क्या हाल होगा, फिर आगे का क्या बात है भाई। अब तो नहीं सर, इन बहनों को आप रोज बुलाइए, एक लेक्चर से हमारे अंदर उम्मीद जगा है कि हम व्यसन से छूट सकते हैं, नहीं तो उम्मीद ही नहीं था। फिर प्रिंसिपल आकर के हमारी दीदियों को, बहनों को, आप जैसे बहने, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग रोज एक घंटा आइए और इन बच्चों को वैल्यू के ऊपर बातें करिए। और वहां हमारी 3 महीना से मुरली जो हमारा होता है वो सुनाया जाता है और वो बच्चे व्यसन मुक्त हो गए, दूसरे बच्चे भी व्यसन मुक्त हो गए। क्यों सुनाया? आप साधारण स्थान पर नहीं आए हो, जो मेडिटेशन आप जो सिखाया जा रहा है वो साधारण मेडिटेशन नहीं है। ये रिसर्च करके देखा गया है, हमारे मेडिकल में 4,500 डॉक्टर्स मेंबर हैं, हम लोगों ने रिसर्च करके देखा है कि जो व्यसन से विड्रॉल होता है, व्यसन छोड़ाने के लिए सब लोग छोड़ाते हैं, एनजीओ छोड़ा रही है, साधु संत इसमें लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है, लेकिन सबको रिजल्ट कितना मिलता है? 10%, 20%, ज्यादा से ज्यादा 30%, इससे अधिक रिजल्ट नहीं मिलता है। ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन से 97% रिजल्ट मिलता है। ये बातें सरकार को जब पता लगी तो भारत सरकार ने, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हमारी दादी जी को पिछले 2023 में 4 मार्च को लेटर भेजा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी जी हैं, उनके नाम से लेटर भेजा, दादी जी आप भारत को व्यसन मुक्त बनाने की, युवाओं को व्यसन मुक्त बनाने की सेवा कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है, हम दोनों मिलकर करें तो और अधिक काम करेंगे। 4 मार्च को एमओयू साइन शास्त्री भवन में, उनके हेडक्वार्टर में, उनके कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे, रामदास अठावले बॉम्बे के स्टेट मिनिस्टर थे, वहां चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चेयरमैन, डायरेक्टर, सबके सामने ये साइन हुआ। और उन्होंने कहा कि हमको 3-3 मास का रिपोर्ट दीजिए। हम 3 मास का रिपोर्ट दिया तो वो लोग हैरान हो गए, इतना आप लोगों ने सेवा कर दिया 3 महीना में। तो उनको लगा कि शायद कुछ ये है, उन्होंने कहा कि रोज का रिपोर्ट भेजिए। हम रोज का रिपोर्ट इनको उनके मीडिया में, इंस्टाग्राम में और इसमें उसमें भेजने लगे, वो फेल हो गया, क्योंकि इतनी रिपोर्ट तो कहीं से आती नहीं है। जो रोज रोज हमारी रिपोर्ट जाती है, 16 गाड़ियां चल रही है, उसके अलावा भी हमारे सब सेंटरों पर कुछ व्यसन मुक्ति का प्रोग्राम होता है, हम रोज के रोज रिपोर्ट भेजते हैं। वो इतने खुश, अभी उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, सारी एनजीओ को बुलाया था, सबको बुलाया था और कहा कि ब्रह्मा कुमारी जितनी सेवा दुनिया में कोई नहीं करता है। इस तरह से तो हमारे कहने का भाव ये है कि आप बहुत अच्छे स्थान पर आए हो। हम छोटे छोटे बच्चों को भी ये करते हैं, बच्चे व्यसन नहीं लेते हैं, लेकिन बच्चे के परिवार वाले, मदर, फादर, ब्रदर, उनके परिवार व्यसन लेता है। एक छोटी सी बच्ची, हम छोटे केजी स्कूल में जाकर के व्यसन के बारे में बच्चों को समझाया, वो बच्ची गई अपने घर में, देखा पापा बीड़ी पी रहा है, पापा के आगे खड़ी हो गई, पापा आप मेरे बहुत अच्छे पापा हो, आप जैसा पापा मुझे मिलेगा नहीं, हर जो कुछ कहती हूं आप मुझे देते हो, लेकिन आज दीदी ने बताया कि सिगरेट बीड़ी पीने से कैंसर होता है, अस्थमा होती है, टीबी होता है, आपको कैंसर हो जाएगा, आप नहीं रहोगे, मुझे कौन प्यार करेगा। और आंखों में आंसू भर के उसके गोदी में, बाप है उसकी गोदी में चली गई। बाप ने प्रॉमिस किया, बेटा आज समय बीड़ी नहीं पीऊंगा, और दूसरे दिन आश्रम पर जाकर के कहता है दीदी मुझे 7 डेज का कोर्स कराइए, और सारा परिवार व्यसन मुक्त हो गया। इस तरह की सेवाएं चल रही है सारे भारत में, और जो स्टेट बाकी है, जो यूनियन टेरिटरी बाकी है, वो इलेक्शन के कारण, आचार संहिता के कारण हम रुके हुए हैं। 4 तारीख को पूरा हो रहा है, उसके बाद सारे स्टेट में व्यसन मुक्ति का काम हम जोर शोर से पूरा करेंगे। सारे युवाओं को, गांव वालों को, हर व्यक्ति को व्यसन मुक्त करने का प्रयास करेंगे। क्यों, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, ये ईश्वर का प्रोजेक्ट है। अब आप कहेंगे कि ईश्वर आकर के यही बेसन छुड़ा रहा है। हाँ, ईश्वर आकर के भारत को स्वर्ग बना रहा है और उस स्वर्ग में देवताओं का राज होगा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज होगा। तो कोई देवता बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, खैनी खाते हुए, तंबाकू खाते हुए, गुटखा खाते हुए देखा है? अच्छा चलो नहीं देखा है, तो कोई मंदिर में प्रसाद गुटखा का चढ़ाते हुए, बेसन का चढ़ाते हुए देखा है? नहीं। तो हम सब यहाँ आए हैं देवता बनने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो इन सबको सबको दान करके जाना। अगर कोई लेते हैं तो दान देना है, नहीं छूटता है तो हम आपको होम्योपैथी दवाई भी देंगे और उसे 100% ठीक हो जाएंगे। तो अधिक टाइम ना लेकर के हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। दिल तो आप लोगों के सामने बहुत कुछ कहने को आ रहा है, लेकिन घड़ी भाग रही है, दीदियां का इशारा है, तो हम यही पूरा करते हैं। ओम शांति, बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया, थैंक।
जैसे हमारा टॉपिक भी है द मैजिक ऑफ साइलेंस, तो अभी तो हमारा मन शांत है ना, और शांत मन के अंदर कभी भी ये विचार नहीं आ सकता कि कोई व्यसन होवे या करे। लेकिन हम सब क्या करेंगे, क्या करेंगे? आज भाई साहब को हम अपना यस करें, किस बात के लिए? कि हम दूसरों के व्यसन को छुड़वाएंगे। कर सकते हैं हम सब यूथ मिलकर के ये काम? तो आज के दिन हम ये संकल्प करेंगे कि हम तो खुद, क्योंकि शांत मन जिसमें कोई खालीपन नहीं है, जिसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, दुख नहीं है, अप्राप्ति नहीं है, ऐसा शांत मन हो रहा है ना अभी हमारा, तो शांत मन में कभी भी कोई व्यसन की बात सोच भी नहीं सकता। और याद रखना, हम खुद की चाय नहीं छोड़ सकते तो दूसरे का अल्कोहल तो नहीं छुड़वा सकते है। इसीलिए कोई भी प्रकार का व्यसन हम करेंगे तो नहीं, लेकिन दूसरों को भी छुड़वाएंगे, और ये बहुत बड़ी सेवा है जिससे हमें बहुत सारी दुआएं प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद बनारसी भाई जी आपका। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ श्याम प्रताप भाई जी, जो चोहटा गांव के सरपंच है, और आप खास आज के इस टॉपिक के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो हम सबके सम्मुख आपके विचार रखेंगे। श्याम प्रताप भाई, आपको बेस्ट पंचायत का अवार्ड भी प्राप्त है, हम सब तालियों से आपका सम्मान करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। कैसा लग रहा है आप सबको? आज दूसरा दिन है हमारा यहाँ पर, और आज विषय भी बहुत ही जो मेरे दिल के करीब था वो विषय मुझे दिया गया है। पहले ये बताएं कि अभी जो भी हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए कितने लोग हैं? हाँ, और शहरी क्षेत्र से बचे हुए हैं। आज जो विषय है नशा मुक्ति का, मैं गांव की बात करूंगा क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, और गांवों में कोई चीज को समझाने में कई चीजें ऐसी होती है जो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं, कई चीजों में बड़ी मुश्किलात आती है। आज इस मंच के माध्यम से मुझे ऐसा विषय जिसको थोड़ा सा वृहद रूप में मुझे बताने का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और पूरे ब्रह्मा कुमारी संस्थान से पिछले 1.5 वर्ष की जो मेरी यात्रा रही, उसमें मैंने ये जाना कि कैसे कई चीजों को हम कर पाते थे लेकिन उस बेहतरी ढंग से नहीं कर पाते थे ग्रामीण क्षेत्र में, या मेरा जो कार्य क्षेत्र रहा वहां पर। लेकिन जब से हम यहां से जुड़े तो एक अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा, वो आप शायद जो पहली बार यहां पर आए उनको इन 2 दिन में भी फील हो रहा होगा कि कैसे हम एक गर्मी से जूझ रहे हैं और यहां कैसी शीतलता हमें मिल रही है। तो ये ही हमारे मन में भी ऐसा ही चल रहा था, और यहां आने के बाद जो चीजें मिली उनके बाद हमें लगा कि कैसे हम जीवन को किस दिशा में लेके जा रहे थे। आज जो विषय दिया है, अगर मैं इसके पीछे एक दीदी एक स्टोरी सुनाऊं अगर कैसे इस विषय से जुड़े, तो जब सरपंच बने तो लगभग 16 जनवरी 2020 की बात है, और 27 जनवरी को जब हमने कार्यभार संभाला तो 27 जनवरी के दो दिन बाद ही एक रेखा बुनकर नाम की एक औरत हमारे यहाँ पर आती है और वो कहती है कि जो मेरे साथ समस्या रही, बड़ी रोती हुई आती है, विडो थी, चार उसके बेटियां और एक बेटा, वो आके कहती है कि भाई साहब मेरी हेल्प करो, मेरे लिए बहुत, मेरा जीवन एकदम दुर्वैसा हो गया है, मैं कैसे अपना जीवन यापन करूं समझ में नहीं आता। तो मैंने उस औरत के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसके पति की एक साल पहले डेथ हुई है और डेथ होने की वजह क्या थी, अत्यधिक शराब का सेवन। उस वक्त मैं भी युवा था, पहले शायद बेरोजगार ही था, तो आर्थिक सक्षम मैं भी नहीं था कि मैं क्या परिवार की इसकी कैसे मदद कर पाऊं। तो मैंने जाना और सीखा कि कैसे मैं इस परिवार की मदद कर सकता हूं। उस परिवार को हालांकि हमने मनरेगा से जोड़ा, जो भी सरकार की जितने भी अनुदान थे उन सबसे उस परिवार को जोड़ा, आज वो परिवार अपना जीवन यापन थोड़ा बढ़िया कर रहा है। लेकिन विषय ये था कि ऐसे कितने परिवार होंगे, एक रेखा बुनकर की मदद तो शायद हमने कर दी लेकिन ऐसी कितनी रेखाएं होंगी, कितने ऐसे लोग होंगे। तब से निर्णय किया, वो जो जनवरी माह था उसके बाद 31 मई आया और कैसे हम शुरुआत करें नो टबाकू डे की, और उसमें भी हमने कुछ प्रयास किया तो हमने बच्चों को उसमें ज्वाइन करवाया। हमारे गांव की खास बात है कि हम जैसे कुछ ऐसी योजनाएं या ऐसी मुहिम होती है जिनको हम अलग अलग लोगों की वजह से या उनके साथ मिलकर हम करते हैं, तो हमने तंबाकू का और एक प्लास्टिक मुक्त जागरूकता अभियान, ये दो बच्चों के साथ हमने किया। अभी आप सोचिए कि जैसे कोई भी है शराब छोड़ना है या कोई भी हमें गुटखा छोड़ना है, सुपारी छोड़ना है, तो गांव वाले या कोई भी आके कहेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप सोचिए अगर आपका बच्चा रोता हुआ आपको कहे कि नहीं ये रहने दे। और इसको हमने प्रैक्टिकली किया, इसके साथ साथ ही कई और उपाय किए। बीच में कोरोना था तो कोरोना में आपने देखा कि कैसे हमने दो वर्ष ऐसे बिताए, 27 जनवरी को ज्वाइन किया, 21 मार्च से मार्च के माह में शायद वो चीजें आ गई। तो हमने क्या करते थे, हम भंडारा करते थे, मतलब हम खाना बनाते थे बिना हलवाई के गांव वाले मिलकर, और उस भोजन को हम लोगों तक पहुंचाते थे। किन लोगों तक, जो आर्थिक सक्षम नहीं थे, जो मजदूर थे, जो काम नहीं कर पा रहे थे, और उनमें से बहुतायत मात्रा में लोग शराबी या ऐसा नशा करने वाले थे। तो हमने प्रयास किया कि जैसे हम भोजन शाम को देते थे तो हमने प्रयास किया कि क्यों नहीं इनको 6 बजे से पहले भोजन करवा दिया जाए, और उद्देश्य ये भी था कि ये भोजन भी कर रहे और नशे से भी दूर रहे। तो एक ये बड़ी अच्छी मुहिम रही ग्रामीण क्षेत्र में, ये आप जैसे युवा भी ऐसी कुछ कर सकते हैं। कई जैसे ऐसे भिखारी होते हैं जो रोड पे भीख मांगते हैं और जो भी पैसा उनको मिलता है वो सबसे पहले शराब खरीदते हैं। अगर उनको हम पैसे की जगह पर अगर थोड़ा सा भोजन करवा दे, वो भी सुबह 6 और शाम को 6 बजे से पहले, तो शायद वो नशे पर थोड़ी सी रोकथाम लग सकती है। तो आज समय भी कम है, मैं इतना सा आप सब युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे पता है कि आप में से कोई नशा नहीं करता, मैं भी नहीं करता, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम जो इस लतों में पड़े हैं उनको कैसे किसी न किसी माध्यम से हम चीजें छुड़वाएं। अभी 15-20 दिन, एक महीने पहले की बात है, हमारे यहाँ पे कुछ लोग बीड़ी पीते थे ज्यादा, तभी 30 लोगों का यूनिट हमारे गांव से यहाँ पर आया। उनमें से लगभग 8 से 10 लोग ऐसे थे जो कि बीड़ी की बड़ी उनको वो लगती थी, तलब लगती थी, वो कह रहे थे हम तो छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ आए और 8-10 दिन में उनमें जो जीवन में बदलाव आया, आज वो फक्र से कहते हैं कि हम ये चीजें हमारी बदली है। तो कैसे हम किसी को चलते हुए को अगर अच्छा रास्ता दिखा देते हैं, वो भी हम सब बहुत बड़ी उपयोगी चीज होती है। आज हमारे पास ऐसा ऑप्शंस है, ऐसे कितने मतलब संस्थान है जो इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। आप जैसे यहां आए हैं, हम कितनी चीजें सीख रहे हैं, सुबह से शाम तक हर नए विषय पर हमें नई जानकारियां मिल रही। तो उन जानकारियों को समाज में कैसे हम जाके बताएं, ये तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहां तो हम पढ़ने आए हैं, कुछ बनने आए हैं, अब बनके हम क्या करते हैं समाज के लिए, वह तब हमारा यहां पर आना सार्थक होगा। यहां आके भी हम वैसे ही बने रहे तो, कोई जैसे कोई विश्वविद्यालय में गए, कहीं से जाके हम लॉयर बनते हैं, कहीं जाके डॉक्टर्स बनते हैं, तो यहां भी वो चीजें बनती है, बस उनके नाम अलग हो सकते हैं। और वो कर्तव्य का वहन हम जाके समाज में क्या कर पाते हैं, तब आना सार्थक होता है। तो हम यहां पर सभी आए हैं, अभी यहां रैली का एक कार्यक्रम है, उसमें सब सम्मिलित होंगे और एक संकल्प लेके यहां से निकलेंगे। जैसे अब हमारे गांव से हमने प्रयास किया तो लगभग 19 से 20 ऐसे लोग हैं जिनका जीवन मतलब भयंकर नशे में थे, श्रवण सेन है, सावरवल मीणा है, रामगोपाल वर्मा है, ऐसे नाम जबान पर याद है। आज उन लोगों का वो देखो, ये श्रवण सेन मेरे से नाम निकला, एक ऐसा व्यक्ति जो सेन समाज से आता था, नाई की दुकान हुआ करती थी, चार बच्चे थे, कुछ भी नहीं, जीवन बर्बाद हो गया, बच्चों की शादी भी नहीं कर पा रहे थे, सुबह से जाके इस लत में लग जाते थे, और आज उसके चारों बच्चों की शादियां हो गई। बहुत अच्छा सैलून, पूजा हेयर आर्ट के नाम से हमारे गांव में सैलून है, उसी श्रवण सेन का। ऐसे कितने श्रवण सेनों को हम बदल सकते हैं। तो जो ये आज जो हम प्रतिज्ञा करते हैं या संकल्प लेते हैं, भले ही किसी एक को बदल के दिखाएं, लेकिन बदल के दिखाएंगे। और आज मैं इतना ही बात करूंगा, और कोशिश करनी है कि हमें अपना जो बदलाव है लोगों तक दिखाएं और हम बदल के दिखाएं। थैंक यू सो मच।
खुद बदलेंगे तो जग अपने आप बदल जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने रखी। अभी मैं आमंत्रित करती हूं हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी को। कल आपको सुना है, कल आपका परिचय प्राप्त हुआ है, आप बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, आप एक अच्छी वक्ता के साथ साथ बहुत प्लानिंग बुद्धि है और हर कार्य बहुत दिल और लगन से करते हैं। ऐसी बहुबुद्ध प्रतिभा संपन्न गीता दीदी से अभी हम गुण विशेष प्राप्त करेंगे।
ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी, श्याम प्रताप भाई जी, हमारी रीटा बहन और आप सभी दोपहर के रेस्ट को त्याग कर सवेरे जल्दी उठे हैं, फिर भी आज यहाँ पर अभी इस समय आए हैं। तो वैसे ये दोपहर का सेशन ओनली फॉर एक्टिविटी का ही था, पर जब प्लान किया था तब इतना नहीं पता था कि माउंट आबू में भी 38-39 डिग्री तक गर्मी होगी। तो दोपहर का टाइम में एक बाहर की एक्टिविटी थोड़ा सा मुश्किल लगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे हॉल में बैठे हैं। तो अभी थोड़ी सी एक्टिविटी हम बाहर करेंगे। दो तीन बातें मुझे शेयर करनी है। समर्पित जीवन में हम लोग बहुत सारे लोगों से जब संपर्क में आते हैं, सेंटर पर आते हैं भाई बहने, और उनके जीवन में हम परिवर्तन के लिए प्रेरणा देते हैं, और हम कई अभियानों में स्कूल वगैरह में भी जाते हैं। तो दो तीन अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। तो नशा जो आज भारत सरकार ने अप्रोच किया है और क्यों इतना बड़ा एक दावानल बन गया है, तो दो तीन बातें। एक बार मैं एक स्कूल में गई थी, तो वहां हम लोगों ने प्रोग्राम करने के बाद एक हवन कुंड रखा और सभी को कहा कि आप जो प्रेरणा पाए हैं कि ये सारी नशा की जो चीजें हैं तो कैसे आपकी शरीर को नुकसान करती है, ब्रेन एक्टिविटी पर असर होता है, अल्सर होता है, जीभ का कैंसर, पेट का कैंसर, आप सब जानते हैं। और युवाओं को इसलिए विस्तार नहीं कर रहे कि आप गूगल पे जाएंगे तो सारे इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स सब कुछ आप पढ़ लेंगे। नॉलेज की कहीं कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हर शादी में, पार्टी में और पिकनिक पे हम देखते हैं तो युवाओं को किस हालत में देखते हैं। अभी रिसेंटली पुणे में एक केस हुआ है, एक पोर्श गाड़ी में एक कम उम्र के युवा ने दो लड़कों का गाड़ी के एक्सीडेंट करके जान ले ली। हाँ, दो जने को। अब आप सोचिए, अभी उसके बाद सब कुछ हो रहा है, कितना लंबा प्रोसेस चल रहा है वो अलग बात है। तो कहाँ जा रहा है हमारा युवा? तो एक लड़का, मतलब स्कूल फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक की थी, तो सभी कहने लगे कि ठीक है हम छोड़ेंगे, क्योंकि स्कूल में भी हम जाएंगे ना तो बहुत सारे गुटखे के पाउच ये वो दिखाई देते हैं। गांव में तो विशेष करके अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, घर में भी वो लोग देखते हैं अपने बड़ों को, तो सहज प्रेरणा मिल जाती है। जगह जगह रंग बिरंगी गुटखे दिखाई भी देते हैं, और सबसे करुण वास्तविकता और ये कहेंगे कि जो युवाओं के आइकॉन है वो टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखाई देते, बोलो जुबा, सोचिए, वो उसको केसर के रूप में दिखाते हैं, लेकिन आप जब लेने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां केवल सुपारी या ये नहीं होता है, लेकिन गुटखा है वो। ढेर सारी कंपनियां विज्ञापनों में करोड़ों रुपया खर्च करती है। लोग हमें कहते हैं, बेन जी अगर आपको व्यसन मुक्त समाज बनाना है तो कंपनियों को बंद करा दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक अंदर से हम सभी जागरूक नहीं होंगे तो ये परिवर्तन तो नहीं आने वाला है। तो मैंने जो देखा, एक 7 साल का बच्चा, वो आकर के चिटकी डाला किसमें, वो हवन कुंड में। तो मैंने कहा क्या करेगा, बोला आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा। तो हमने कहा कब से पीते हो, बोले पिछले साल से। मैंने कहा कैसे मिल जाती, बोले पापा पीते हो टुकड़ा छोड़ते हो शुरू करता हूं, ऐसे करते आदत हो गई है। और आपको मालूम होगा इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ था, 4 साल का बच्चा इंडोनेशिया का, चेन स्मोकर है, और ये कैसे शुरू हुआ, उसकी मां क्योंकि गरीब थी, काम में लगी रहती थी, तो वो रोड पर अपना काम करती थी कुछ, और वो बच्चा पास में खेलता रहता था। तो जितने भी लोग रोड पे स्मोकिंग करके, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा स्मोकिंग है, स्मोकिंग करके वहां निकलते वो बच्चा देखता है। अच्छा, फिर वहां रुकते थे, वो कुछ स्ट्रीट वेंडर थी तो उसके पास रुकते, तो वो टुकड़ा छोड़ते पी करके, ऐश उसकी गिराते, वो छोटा बच्चा रीड करता, और देखते 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 वो पीना शुरू किया, और इतना तहलका मचा था इस वीडियो का कि उसकी मां और उनकी परवरिश क्या है। तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि गरीबी, अवेयरनेस की कमी और सहज उपलब्धता, हर जगह मिल जाता है। स्कूल के बाहर गवर्नमेंट ने बहुत जगह रूल्स बनाए हैं, लेकिन किसको किसको टारगेट करना है वो पता है, कंपनी वालों को पता है टारगेट करना है तो किसको पकड़ना पड़ेगा, इसलिए वो अजय देवगन को पकड़ते हैं, अक्षय कुमार को पकड़ते हैं, शाहरुख खान को पकड़ते हैं। और दूसरी एक आजकल लत लगी आप सबको पता है, ऑनलाइन जुआ, और उसकी भी एडवर्टाइज हमारे क्रिकेटर्स, बॉलीवुड के हीरोज कर रहे हैं। और जब वैधानिक चेतावनी आती है ना, वो बड़ी धीरे से बोली जाती है, कृपया अपने रिस्क पर खेलें, लेकिन वो बड़ा धीरे से बोला जाता है, लेकिन पियो पियो खेलो खेलो वो बड़ा जोर जोर से बोला जाता है हर एडवर्टाइज, है ना। बाकी तो सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन होता क्या है, है ना। हम देख रहे हैं बहुत बड़ा मार्केट है ये, और बहुत सोची समझी साजिश के तहत भारत के युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, सभी देशों में ये कारोबार चल रहा है। हम सबको बड़ी चिंता होती है कि कौन हमारे पूर्वज, क्या हमारी संस्कृति और क्या हम आज हो रहे हैं, कितने परिवार बर्बाद हो गए। एक गांव में हम अभियान लेकर के गए थे, यहाँ आबू रोड के पास में, भाई साहब रेवदर के पास एक गांव है, तो हमको बोला कि ब्रह्मा कुमारी संस्था को कुछ प्रोग्राम करना है तो पहले गांव के ठाकुर को मिलना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुरों का बड़ा वर्चस्व होता है यहाँ पे। हम गए तो उन्होंने कहा बहन जी आपकी संस्था बहुत बड़ी है, हमारे गांव में ना एक तो पानी की कमी है, दूसरा हमारे गांव के युवाओं के पास नौकरी धंधे नहीं है, सबसे पहले तो आप इस दिशा में कुछ काम करो तो करो, बाद में हमें ज्ञान देना, उपदेश देना। लोगों को कड़वी लगती है ना बातें ये सब। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, पहले मुझे ये बताइए आपके गांव में पानी की कमी है, टैंकरों से पानी डालना पड़ रहा है, बहुत दिक्कतें हैं राजस्थान में। लेकिन मैंने कहा मुझे आपके गांव के 2 लोग बुला दीजिए। बोले कौन? मैंने कहा एक तो जिसका गुटके बीड़ी का ठेला है, क्योंकि मैं पहले सर्वे करके गई थी उस गांव में, और दूसरा जिसका शराब का ठेका है, प्लीज आप 2 को बुला दीजिए। मैं बैठी रही उनके पास वहां रावले में, उन्होंने बुलाया। मैंने कहा ठाकुर साहब की हाजिरी में सच सच बताओ, तुम्हारे गांव में 1 महीने में कितने रुपए का बीड़ी सिगरेट का तुम्हारा धंधा चलता है और कितने का शराब बिकता है, दोनों बताओ। ये बात आज से 18 साल पहले की है। उस शराब के ठेके वाले ने बताया, गांव कितना छोटा है मैं बताऊं, 150 घर है सिर्फ। उसने बताया 3.5 लाख का मेरा महीने का धंधा है, कितना साल पहले की बात है। और जो गुटखा बीड़ी बेचने वाला था उसने कहा मैं महीने का 9-10 हजार तो सिर्फ इससे आराम से कमाता हूं, नहीं सॉरी 19-20 हजार तो मैं आराम से कमाता हूं इतने छोटे गांव में। मैंने उस ठाकुर को ये बोला कि ठाकुर साहब हमारी संस्था आपके घर घर में पानी का टैंकर नहीं दूध भी भिजवा देगी, मैं बोलती हूं। लेकिन ये सब के लिए जो इनके पास धन आता है ना, पहले ये बंद करा दो। फिर पानी तो क्या, घर घर को दूध का टैंकर मिल जाएगा। कहां है हमारे पैसों की बर्बादी, कहां है हम गरीब, मन के गरीब हो रहे हैं, आदतों के गुलाम हो रहे हैं, और हम चाहते हैं हम सबके पास अपनी बात चलाएं, हम अपने अधिकारों की मांग करें, हम ये करें। अरे जगह जगह नालियां अटी पड़ी है। अभी दो दिन के बाद हम सब पर्यावरण दिवस मनाएंगे। सारी नालियां जाम पड़ी है तो गुटके के पाउचों की वजह से। कितने ही बातें इसके ऊपर निकल सकती है। मैं हरियाणा गई थी लास्ट ईयर Y20 के प्रोग्राम में, एक गांव मिला भुना करके गांव में फतेहाबाद के पास। तो वहां की माताएं, जब ये Y20 प्रोग्राम में भी हमारा पॉजिटिविटी और ये सारा एजेंडा था, बहुत सारी बातें निकली, तो एक माता ने उठ के कहा, बहन जी अगर आप युवाओं को सुधारते हो तो मैं अपना पल्लू बिछा के आपके आगे नमन करने को तैयार हूं। बोले इस गांव के, उसने सही बताया, इस गांव के 80 युवा जेल में है। कुछ छूटने पर है, कुछ छूट गए, कुछ होके आए, कुछ अभी सड़ रहे हैं जेल में। और कारण क्या, नशे की गिरफ्त में। छोटे से गांव में, घर घर में आप जाओ तो बोले लेडीज मिलेंगी, बूढ़े मिलेंगे, युवा नहीं मिलते हैं। बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत गंभीर समस्या है और बहुत सारा काम करने को फील्ड है। देखिए मैजिक ऑफ साइलेंस में हम सब शक्ति इकट्ठी करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। हमारी दादी जी कहते थे हर स्कूल में एक फीस होती है, यहां की भी एक फीस है, पता है। दादी बड़े सहज भाव से कहती थी, 5 खोटे सिक्के दे दो, 1 आना दे दो। 5 खोटे सिक्के, बड़े बड़े तो हम बातें कर लेते हैं कि लोभ नहीं रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये वो है ना, इतनी बातें मत सोचिए। 5 बुरी आदतों को तो यहां छोड़ के जाइए। ये 5 खोटे सिक्के बाबा के घर में छोड़ के जाइए, 1 आना। तो दादी कहती थी अगर इस स्थान पर या आप जहां रहते हैं वहां पे भी जो हमारे शांति कुंड सेंटर्स बने हुए हैं, 1 बार भी रोज आते रहेंगे, जैसे भाई जी ने कहा कि एक बार इनका ग्रुप गांव से यहां आया तो वो व्यसन मुक्त होके गए ग्रुप में के लोग। आज कितनी कंपनी वाले अपने सारे वर्कर्स को यहां भेज रहे हैं। बनास डेयरी ने अपने टोटल ऑफिसर्स को, टोटल वर्कर्स को यहां भेजा कि वो यहां आएंगे, 3 दिन का सुनेंगे और व्यसन मुक्त होके जाएंगे। तो आज ये दिन है जब हम सभी को इस गंभीर समस्या पर गंभीरता से सोचकर और एक एक्शन प्लान करने की जरूरत है। हम क्या करेंगे। लोग कहते मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल इससे छूटा हुआ हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है। देश का कितना सारा बजट में से खर्चा स्वास्थ्य में चला जाता है, गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, एक्सीडेंट वालों के लिए मुफ्त इलाज होता है, लेकिन ये एक्सीडेंट होते कैसे हैं? गरीब इतने बीमार पड़ते क्यों हैं? उसके पीछे कई सारी हमारी ये बुरी आदतें हैं। तो कहीं ना कहीं वो खर्चे बढ़ रहे हैं और वो खर्चों का आपकी जेब पर टैक्स के रूप में भारी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? फर्क तो पड़ता है। एक व्यक्ति मेरे पास में बैठ के अगर सिगरेट पी रहा होता है तो जितना उसके पेट में धुआं जाता है ना, उतना ही मेरे अंदर भी जाता है। फर्क तो पड़ता है। जिस घर में कोई बड़े बुजुर्ग बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, उस घर में जो नवजात बच्चे होते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिक बचपन से ही दमा, अस्थमा आदि बीमारियां प्रवेश कर जाती है। फर्क तो पड़ता है। घर में खर्चा चलाना होता है तो सब मेंबर्स ध्यान देते हैं कि भाई तुम इतना करोगे, तुम इतना करो। अर्निंग करनी होती, सब मिलकर अर्निंग करते हैं। तो घर का एक व्यक्ति नशे में अगर साल का लाखों रुपया खर्च कर रहा है, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहा है और आप नहीं कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो बोलिए पड़ता है, पड़ेगा। तो ये और एक और नजरिया जो परमात्मा ने हमें दिया, ये विश्व परिवार है, ये देश मेरा परिवार है, मेरा गांव मेरा परिवार है, मेरा घर और मेरे पड़ोस, मेरी कॉलोनी सोसाइटी वो भी मेरा परिवार है। और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति किसी कीचड़ में जा रहा हो तो क्या मैं उसको हाथ नहीं पकड़ूंगी, बाहर नहीं निकालूंगी? रास्ते चलते कोई गिर गया है तो मैं उसको उठाऊंगी नहीं, छोड़ दूंगी? कोई बीमार है तो मैं उसको छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं। मुझे फर्क पड़ेगा, मैं उसकी मदद करूंगी, मैं उसको बाहर लाऊंगी, मैं उसको सपोर्ट करूंगी। इसी तरह से अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलेज स्कूल में नजर डालिए। कितने युवा हैं जिनकी जेबें भरी हुई है गुटकों से, सिगरेट पीना जो अपनी शान समझते हैं, शराब के बिना कितनों को नींद नहीं आ रही है। क्या ये सब हमारे भाई बहने नहीं है? हम उनके लिए कुछ नहीं सोचेंगे? हम परमात्मा के बच्चे हैं, वो विश्व कल्याणकारी है, हमें भी क्या बनना है? कल्याणकारी बनना है। तो आज यहां बाहर एक बोर्ड रखा है, जो भी आपने समझा, बहुत बड़ा विषय है, 10 दिन तक हम सुन सकते, इतना इस विषय पर मटेरियल है, फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने सारे हैं, लेकिन हमारे पास इस समय टाइम नहीं है। तो छोटा सा एक बीच का टाइम था, आज नो टोबेको डे था, तो हमने और कोई एक्टिविटी न सोच के ये सोचा कि आप सभी ऑनेस्टली, अगर आप खुद कोई भी प्रकार का नशा लेते हैं तो उसे आज यहां पर छोड़ने का संकल्प कीजिए। भगवान के घर में कुछ दान देके जाते हैं, अपनी बहन को मिलने जाते हैं तो बहन को कुछ गिफ्ट देके आते हैं, लिफाफा देके आते हैं, कुछ तो देके जाते हैं। यहां इतनी सारी आपकी बहनें हैं, यहां भगवान का घर भी है, आप आए हैं, तो अपने जीवन की एक बुराई हमको दान में नहीं देंगे? 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 किसका फायदा होगा, किसको खुशी मिलेगी? तो एक तो आपको संकल्प करना है, और दूसरा, जैसे यहां से बार बार कहा गया कि आप अपने आसपास के लोगों से किस युक्ति से, किस बात से, किस सुझाव से, व्यसनों से उनको मुक्ति कराएंगे। तो बाहर आपको चिट मिलेगी और आपको एक तरफ उपाय सुझाव और एक तरफ आपका संकल्प, कोई भी एक चीज आपको स्टिक करके, वहां पेन भी है, आपको स्लिप मिलेगी और आप उसमें लगाते जाएंगे कि आज के दिन मैं कुछ तो एक करूंगा, मैं अपने एक फ्रेंड को छुड़ाऊंगा, मैं अपने पापा को, मैं अपने दोस्त को, मैं अपने परिवार में से किसी को, मैं खुद, मेरे में ये बुरी आदत है, इसको छोड़ूंगा। क्योंकि इतने भ्रामक प्रचार हो रहे, इतनी दुनिया में इन सब चीजों में फंसते जा रहे लोग। राजस्थान के, मैं जिस एरिया में, वेस्टर्न राजस्थान में रहती हूं, धड़ल्ले से स्मैक मिल रही है, हेरोइन मिल रही है, गुप चुप बांटी जा रही है, और उसकी बॉर्डर एरिया से तस्करी हो रही है, और उसमें सबसे बड़ा शिकार बनाया जा रहा है 12-13 साल से 16 साल के बच्चों को, मैंने खुद देखा है, और फंसते जा रहे हैं। पहले उनको आदी बनाया जाता है, फिर उसके बाद उनको कहते हैं कि पैसा तो इतना है नहीं, बहुत महंगी चीज है, तुम इसकी तस्करी करो, यहां से वहां बॉर्डर पार कराओ, कई बच्चे उसमें फंस भी जाते हैं, बहुत सारा कारोबार हो रहा है ऐसा। तो हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, अपने समाज के लिए? यहां से मुझे क्या प्रेरणा मिली वो आपको उसमें लगानी है। और फिर हम एक छोटी सी, क्योंकि धूप थी, प्रतीकात्मक रैली, केवल एक प्रतीकात्मक रैली के रूप में, भाई साहब बहुत समय से नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां इन्होंने अलग अलग स्टेट में इनको लोगों ने गिफ्ट की है, कि अगर आप लोगों को नशा छुड़ा रहे हैं, खड़े खड़े इनको लोग लाखों की गाड़ियां दे रहे हैं कि इस गाड़ी में आप ले जाओ, जा जाके लोगों को कराओ, बहुत बड़ा पुण्य का काम है, किसी घर का एक जवान बेटा सुधर जाए, पूरा घर उनको दुआएं देता है। तो एक रैली नुमा हम यहां से, आपका जो रेसिडेंस है राज ऋषि भवन, उस तरफ तक जाएंगे रैली के फॉर्म में, लेकिन पहले आपको अपना संकल्प या इस बात के लिए क्या करना चाहिए वो आपका सुझाव, सारे सुझाव पड़े जाएंगे आपको, जो दिल दिमाग में आता हो कि स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस होना चाहिए, कॉलोनीज में होना चाहिए, क्या विज्ञापन के लिए होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, आपको जो सुझाव दिमाग में आता है वो आप लिखें या आपका अपना संकल्प लिखिए। ये मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत विशेष विनंती है कि आप आज के दिन एक अच्छा काम जरूर करेंगे और फिर रैली को हम वहां पहुंचाएंगे, वहां आपको बैंड गाइड करेगी। तो ये छोटी सी एक्टिविटी के लिए अभी आपको दिन में बुलाया, आप सभी आए तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर रूप से हमको गीता बहन ने अवगत कराया कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हम अपने आप को भी बचाए और औरों को भी बचाए। औरों को बचाने के लिए आपको अगर गाइडलाइन चाहिए तो जैसे भाई साहब भी नशा मुक्ति के बहुत सारे अभियान चला रहे और आपके करीब भी कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे चले जाएंगे और कोई नशा वाला है आप नहीं समझा सकते हो, लेकिन आप इतना भी कह देंगे कि चलो मेरे साथ इस ब्रह्मा कुमारी केंद्र में आपका नशा छूट जाएगा, तो कहते ना अंगुली बताने का भी पुण्य मिलता है। तो इतना पुण्य कमाने की भी आज एक संकल्प अवश्य करना, क्योंकि हम लोग एशिया की जो सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में है हर संडे जाते हैं, वहां 10,000 कैंसर पेशेंट है और हम उनकी सेवा करते हैं, कुछ नहीं करते, एफर्मेशन देते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं और कभी कभी तो उनके साथ हम खेलते भी हैं, कभी कभी गरबा भी करते हैं, सिर्फ उनको अपने जीवन से जो उनके जीवन में पीड़ित है कैंसर से और शरीर से पीड़ित होने के, सिर्फ शरीर से पीड़ित नहीं है लेकिन मन से वो लोग ज्यादा पीड़ित है, तो उनको सिर्फ हल्का करने का प्रयास करते हैं और इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि हर संडे वो हमारी वेट करते हैं कि कब दीदी आएंगी, कब भाई। हमारी पूरी यूथ टीम है जिसमें आप जैसे भाई बहन भी इन्वॉल्व है और हम सब मिलकर के करीब 10-15 भाई बहने जाते हैं और इतने खुश होते हैं, तब लगता है कि सच में बहुत नीड थी और वहां हमने कुछ दिया और लिटरली फील होता है कि ये दुआओं कमाने का कार्य है। तो अगर कुछ नहीं तो आप एक अंगुली बताकर के बाबा के घर या ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ले आएंगे तो भी बहुत बड़ी दुआएं प्राप्त हो जाएंगी। तो आज के इस छोटे से कार्यक्रम में आप सब आए, आदरणीय भाई साहब, गीता बहन जी, श्याम प्रताप भाई जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अपनी नींद त्याग कर यहाँ पर पहुंच गए, इसलिए आपके लिए आप बड़ी क्लैप लगा दो। और अभी मैं वीरेंद्र भाई और हरीश भाई को आमंत्रित करती हूँ, हम अभी रैली निकालेंगे। आप अपने एरिया में भी ऐसी रैली निकाल सकते हैं लेकिन कहाँ क्या नारे बुला सकते हैं, कैसे जोश भर सकते हैं, क्योंकि इन सब कार्य के लिए अंदर में हम खुद भी मोटिवेट होने चाहिए और दूसरों को भी हम जोश भर सके ऐसे कार्य करने चाहिए। तो हम आगे बुलाएंगे, आप दोनों ही यहाँ समर्पित भाई है, यूथ विंग के कमिटी के मेंबर है, आप दोनों ही भाई शुरू से युवा काल से और यूथ विंग के साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी हम सबको नारे बुलवाएंगे।
ओम शांति। इतने सारे युवाओं को देख करके हम लोग को भी उमंग आता है कि क्यों ना हम युवाओं को ऐसा एक नारा दें जो अपने देश में प्रचलित नारा है व्यसन मुक्ति का। जैसा आज 31 तारीख हम समझ रहे हैं कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जिंदगी चुनो तंबाकू नहीं, तो इस पर हम कुछ नारे देंगे। नारे देने के बाद हम रैली भी निकालेंगे, तो हम बोलेंगे नशे को दूर भगाना है, आप बोलेगा खुशहाली को लाना है।